एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रीयन्ताम् प्रभाषकः ध्रुव भट्टराई। मन्त्री परिषद गतदिने उपविष्टेन उपवेशेन एनसेल संस्थाया आजियाटा नामना मातृ संस्था समूहेन संचयनगत धनगत लाभकर निर्धारण विषय प्रस्तुतम न्यायिक प्रकरणम नेपाल सर्वकारण विजितम इति कृत्वा एतस्मिन् प्रकरणे नेपाल सर्वकाराय सहयोगम कुर्वद्वा सर्वेभ्य पक्षेभ्य धन्यवाद व्यक्तो वर्तते। सिंह प्रसाद वर्तिनी प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय ह्य उपविष्टेन तेनोपवेशेन एतस्मिन् न्यायिक प्रकरणे नेपाल सर्वकारण विजय प्राप्ति अनन्तरम् नेपाल सर्वकारस्य अब्जसु रूप्यकाणि सुरक्षिता नीति समालक्ष्य सहयोगिभ्य सर्वेभ्य पक्षेभ्य धन्यवादम् व्यक्तुम् निर्णीतम् अस्ति। उपवेशस्य पश्चात् संचारकर्मी सह विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री धनराज गुरूङ न्यायिक प्रकरणे विजय प्राप्ति कारणेन नेपाल सर्वकारस्य षष्ठ अब्ज व्यवी अधिकारी रूप्यकाणि हानि रक्षिता नीति अवदत। उपवेशे आगामी आर्थिक वर्षस्य आयव्ययस्य सन्दर्भे सत्तारूढ दलानां मध्ये विद्यमाना असन्तुष्टिर विषयेपि विमृष्टमिति ज्ञापयन् मन्त्री गुरूङ अकथयत्। आगामिनि उपवेशे विषयमुम विस्तरेण विमृश्य समस्या समाधास्यते। सत्ता गठबन्धनस्य दलानां नेता र ह्य सामूहिक विषयसु व्यमृशन् बालवाटार वर्तिनी प्रधानमन्त्री निवासे विहिते विमर्शने गठबन्धनस्य उपवेशनस्य आयव्ययस्य सम्बन्धी गठबन्धनस्य दलानां धारणास्य विषयसु वार्ता सम्पन्निति प्रधानमन्त्रिणा सचिवालयो ज्ञापयति। उपवेशे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आयव्ययस्य सदने प्रस्तुति अवस्थायां कचित विषयान् आवश्यकतया अनुसारेण समाधाय चलितुं शक्यते इत्यभासत। आयव्ययकी प्रस्तुतान विषयान् आधृत्य सत्तायाम् सहभागी भयम् नेकपा एकीकृत समाजवादीन जनता समाजवादी दल नेपालेन च कचित सूत्रेषु विमति प्रकटिता अस्ति। तम विषयमपि शीर्ष नेतार व्यमृशन् विमर्शने नेकपा माओवादी केन्द्रस्य अध्यक्ष प्रधानमन्त्री च पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल गठबन्धने आबद्धानाम् दलानाम् नेतारस्य सहभागिन आसन्। कृत्रिम भूटान देश शरणार्थिनो विधाय अमेरिका देशे प्रेषण सम्बद्धम प्रलोभनम उद्भाव्य कोटिशु रूप्यकाणाम संग्रहणस्य घटनायाम आक्षिप्तस्य पूर्व गृहमन्त्रिण बालकृष्ण खाँड इत्यस्य पक्षतो गतिने काष्ठमण्डप जनपद न्यायालये विमर्शनम प्रारब्धम वर्तते। एतस्य पक्षतो विमर्शनाय चतुस्त्रिंशत अधिवक्तृभि नामानि प्रस्तुतानि सन्ति। जनपद न्यायाधीशस्य प्रेम प्रसाद न्यौपाने विधस्य न्यायपीठे निग्रहण मोचना विमर्शनम सञ्चल्यमानं वर्तते। इदानीमपि केषाञ्चन आरोपिणां पक्षतः निग्रहणमोचन विमर्शनस्य अवशिष्टताया कारणेन तदन्तरमेव निग्रहणमोचनादेश आगमिष्यतीति न्यायालयस्य सूचनाधिकारी दीपक दाहाल अवोचत। सूचनाधिकारिणा दाहालस्य अनुसारेण अधिवक्तृभि समय प्रवर्धिते सति इतोऽपि कच्चित् दिनानि विमर्शनम् सम्भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालयस्य अन्तर्गतस्य सूचना संचार प्रविधि कार्यालयस्य कार्य संचालन विभागेन आयोजिता शान्ति स्थापना कार्य प्रविधि कृते सहकारेण सम्बद्ध चतुर्दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी ह्य काष्ठमण्डपे प्रारब्ध अस्ति। शान्ति स्थापना कार्य वैद्युताङ्कन युत प्रविधि प्रयोगस्य सम्भाव्यता विकासस्य नवीनतम प्रविधि प्रयोगस्य च उद्देश्येन आयोजिता सप्तम संस्करणस्य संगोष्ठीयम् आगामिन आषाढ मासस्य प्रथम दिवसम् यावत् सञ्चालति। रक्षा मन्त्रालयस्य अग्रेसरतायाम् नेपाली सेना समन्वय च सञ्चालिताम् संगोष्ठीम् उप प्रधान रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का ह्य आयोजित विशेष समारोहे उद्घाटयत्। संगोष्ठ्याम् संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयात् कार्य संचालन सहयोग विभागस्य उपमहासचिव अतुल खरे सहायक महासचिव द्वयम् बेनार्डो मार्था हेलेना लोपेच संयुक्त राष्ट्र संघस्य डिसइंगेजमेन्ट फोर्स कमाण्डर प्रवृत्त विभिन्नानाम् एकादशानाम् शान्ति स्थापना कार्यस्य प्रतिनिधयश्च सहभागिनो वर्तन्ते। संगोष्ठ्याम् विश्वस्य सप्तचत्वारिंशत राष्ट्राणाम् संयुक्त राष्ट्र संघस्य द्वाचत्वारिंशत सदस्य राष्ट्राणाम् च प्रतिनिधिनाम् विभिन्न विषय विज्ञै सहितानाम् त्रिंशदुत्तर शतद्वयस्य च जनानाम् सहभागिता वर्तते। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयस्य कार्य संचालन सहयोग विभागस्य उपमहासचिव अतुल खरे कथयति विश्वस्य विभिन्नेषु द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रेषु सञ्चाल्यमानस्य शान्ति स्थापना कार्यस्य डिजिटल प्रविधौ रूपान्तरणा प्रविधि प्रयोग आवश्यको वर्तते। काष्ठमण्डपे ह्य आयोजित पत्रकार सम्मेलने उपमहासचिव खरे शान्ति स्थापनाय सक्रियभ्य सुरक्षाकर्मीभ्य साधारण नागरिकाणाम् सुरक्षा मुख्याभिरुचेः विषयो भवति अतः शान्ति स्थापना कार्य आन्तरूपेण प्रभावकारितया सञ्चाल्यमानै संचार पद्धति अतिरिक्तम गृहकार्यम जायमानम अस्तित्व अज्ञापयते। उपमहासचिव खरे एकीकृतम प्रशिक्षणम क्षमता अभिवृद्धि दूर चिकित्सा शान्ति स्थापना कार्य सूचना प्रयोग अभिवर्धनम च संगोष्ठ्या मुख्यम उद्देश्यम अस्तित्व असूचयत। चीन देशस्य औपचारिक भ्रमणे विद्यमानस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्षस्य गणेश प्रसाद अतिमल सिन्हा विदस्य चीन देशस्य राष्ट्रिय जन कंग्रेस महासभा स्थायी समिति अध्यक्षस्य चाउ लीजी इत्यस्य च मध्ये बेजिङ स्थिते ग्रेट हल अफ द पीपुल्स जनसभा भवने सोमवासरे मेलवार्ता सम्भवत। मेलने अध्यक्ष तिमल सिन्हा संस्कृति परम्पराभ्यम सबल रूपेण संयोजित नेपाल चीन देशहरूमध्ये शताब्दी सौहार्दपूर्ण अति घनिष्ठस्थ सम्बन्ध विद्यमान स्थिति भाषमाण आगामी दिनेषु नेपाल चीन देशहरूमध्ये विद्यमान समुदाय सम्बन्धोऽयम् इतोऽपि प्रगाढो भविष्यतीति विश्वासं व्यक्तवान्। चीन देशस्य ऋण सहयोगेन निर्मितस्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्य उद्घाटनेन नेपालस्य पर्यटनापणे महत्वपूर्ण योगदानं प्राप्यति इति भाषमाण अध्यक्ष तिमिल सिन्हा चीन देशस्य विभिन्नेभ्यो नगरेभ्यः निर्बाधं विमान उड्डयनं भविष्यतीति विश्वासम् अभिव्यनक। मेलने चीन देशस्य राष्ट्रिय जन कंग्रेस महासभा स्थायी समिति अध्यक्ष लीजी चीन देशस्य छिन्दु स्थानत पोखरा स्थानाय उड्डयन सेवा कृते चीन देशात तत्परावस्थायम् अस्तित्व अज्ञापयत। पोखरा विमानस्थलस्य नेपाल सर्वकारण आवश्यकानाम् अशेष पूर्वकारण पूर्णस्य च अवस्थायम् आगामिन जून मासस्य एकविंशात् दिवसात् छिन्दु स्थानत पोखरा स्थानाय प्रत्यक्ष उड्डयन सेवा प्रारब्धम् चीन देश तत्परावस्थायम् स्थितो स्थिति असूचयत। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कृते ह्य हुतात्म गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रे प्रवेशितो वर्तते। चिकित्सकानां परामर्शसनुसार राष्ट्रपति पौडेलस्य चतुर्विंशति घण्टा यावत् निरीक्षणे संस्थाप्य उपचार जायमान स्थिति चिकित्सालयस्य कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अज्ञापयत। राष्ट्रपति पौडेलस्य स्वास्थ्यावस्था सम्प्रति सामान्य स्थिति चिकित्सालयेन ज्ञापितं वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयेन सशस्त्र संघर्षे संलग्नानाम् अल्पवयसाम् सैनिकानाम् व्यवस्थापनस्य विषयक उचित निर्णयानाभावस्य कारणम् दर्शयितुम् आदिष्टम् वर्तते। न्यायाधीशस्य सपना प्रधान मल्लस्य एकल न्यायपीठेन ह्य एतस्मिन् विषये कारणम् दर्शयितुम् नेकपा माओवादी केन्द्रस्य अध्यक्षस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्य तात्कालिक नेतु डाक्टर बाबुराम भट्टराई इत्यस्य च विरूद्धे अग्राधिकार प्रदानत्वेन आदेश प्रदत्तो वर्तते। तात्कालिकस्य नेकपा माओवादिनो नेतृत्वे संचालित सशस्त्र संघर्षे सहभागिन अल्पवयस्क सैनिकाः अज्ञान निर्धारित शिविरात् बहिः निष्क्रमिताः आसन्। तेन निर्णयेन आत्मनाम व्यवस्थापन नाभूदिति निगद्य अयोग्य युद्धरूपेण लेनिन विष्टेन सहितरे जने सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रकरणं पञ्जीकारितम् आसीत्। मधेस प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा सरोज कुमार यादवेन द्वितीयवारं प्रदेशसभात विश्वासस्य मतं प्राप्तमस्ति। प्रदेशसभा ह्यस्तनोपवेशे मुख्यमन्त्रिणा यादवेन विश्वासस्य मतं प्रदातुं विहितस्य प्रस्तावस्य विपक्षे कस्यापि मतस्य अप्रकटनस्य पश्चात् शतप्रतिशतं विश्वासस्य मतं प्राप्तमिति सभामुख रामचन्द्र मण्डल उद्घोषयत्। उपवेशे उपस्थिता नेकपा एमाले दलेन सहितानां सर्वेषां दलानां सांसदाः स्वतन्त्र सांसदाश्चेति कृता त्र्यधिक शतेन प्रदेशसभा सदस्य विश्वास पक्षे मतं प्रदत्तं वर्तते। नेकपा एमाले दलेन अशैव ज्येष्ठस्य प्रथमे दिवसे सर्वकाराय प्रदत्तस्य समर्थनस्य प्रत्यावर्तनानन्तरं ह्य त्रिंशे दिवसे मुख्यमन्त्रिणा यादवेन विश्वासस्य मतं गृहीतं वर्तते। सुदूर पश्चिम प्रदेशसभाया हस्तनोपवेशन प्रदेश सर्वकारस्य आगामिन आर्थिक वर्षस्य नीति कार्यक्रम पारिकृताः सन्ति। उपवेशे सभामुख भीमबहादुर भण्डारी प्रदेश सर्वकारस्य आगामिन आर्थिक वर्षस्य नीति कार्यक्रम बहुमतेन पारिता सन्तीति उद्घोषयत्। तत्पूर्वं उपवेशे मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नीति कार्यक्रम आदृत्य प्रदेशसभा सदस्य उत्थापितान् प्रस्थान उत्तरेन सर्वकारण विपन्नताय निवारणाय वृत्त्युपार्जन सर्जनाय कृषि पर्यटनाय शिक्षाय स्वास्थ्य क्षेत्राय च प्राथमिकता प्रदत्तेति उदयरयत।